शनिवार 30 अप्रैल इंडिया बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। देश के कई हिस्सों में मचा हुआ है बिन पानी हाहाकार। लातूर में नदियां सूखी, लोग बूंद बूंद को तरसे। दूसरी ओर क्रिकेट के पिचों को तर करने के लिए बहा हजारों लीटर पानी। भारत में सूखे और अकाल की स्थितियों के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? आज इंडिया बोल में आंखें खोलने वाली जानकारी देंगे पानी विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। भारत में पानी के संकट पर चर्चा शुरू करेंगे कुछ ही देर में। पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के आधार पर प्रमोशन को अवैध करार दिया है। आज हुए इस फैसले को राज्य के चीफ जस्टिस अजय माणिक राव खानविलकर ने की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, नियुक्तियों के दौरान समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पदोन्नतियों में आरक्षण गलत है। इसकी वजह से वास्तविक योग्यता वालों में कुंठा घर कर जाती है। वहीं हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज प्रमोशन रूल 2002 को भी खारिज कर दिया है। इस नियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रमोशन में 36% तक आरक्षण दिया जाता है। सीरियाई शहर एलेपो पर देश की सरकारी सेना लगातार हमले कर रही है। उधर विद्रोही सेनाएं भी सरकार के कब्जे वाले राज्यों पर हमले कर रही हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एलेपो में 3 इलाकों पर हमले हुए हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। एलेपो में पिछले कुछ दिनों से तेज लड़ाई देखी गई है, जहां सरकारी सेना के हवाई हमलों या विद्रोहियों के रॉकेट हमलों में कुल 240 लोगों की जाने गई हैं। सेना के साथ हुए एक समझौते के तहत हाल में सीरिया के कुछ इलाकों पर युद्ध विराम लगाया गया था, लेकिन एलेपो उन इलाकों में शामिल नहीं। एलेपो में एक विद्रोही कार्यकर्ता जुहैर ने आज हुए हवाई हमलों के बारे में बीबीसी को बताया। मैं रोज की तरह सुबह लड़ाकू हवाई जहाजों की आवाज सुनकर उठा, जो एलेपो के नजदीक इलाकों पर हमला कर रहे थे। उन इलाकों पर करीब 25 हवाई हमले हुए। आखिरी हमला गोवन रैब पर हुआ, जो नजदीक की एक जगह है जहां हम सब्जी और अपनी जरूरत का सामान खरीदने जाते हैं। वहां 4 लोग मारे गए और कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ये थे एलेपो में एक विद्रोही कार्यकर्ता जुहैर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा ने पशुओं की अवैध हत्या रोकने के लिए हुए एक शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन हजारों हाथी दांतों और गैंडे के सींगों में आग लगा दी। नैरोबी नेशनल पार्क में हुए एक समारोह में उन्होंने कहा कि यह दुनिया के लिए एक इशारा है कि हाथी दांतों का व्यापार बंद कर दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति केन्याटा ने कहा कि इस साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले लुप्तप्राय जंगली जीव और वनस्पति की प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में केन्या पूरी दुनिया में हाथी दांत की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा। पिछले एक दशक में अफ्रीकी हाथियों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उनके भविष्य खतरे में पड़ गया है। बांग्लादेश के टांगाइल जिले में आज एक हिंदू दर्जी की हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि निखिल जोरदार अपनी दुकान के सामने बैठे हुए थे, जब उन पर धारदार हथियारों से मोटरसाइकिल पर सवार कम से कम 2 हमलावरों ने हमला किया। पुलिस के मुताबिक निखिल जोरदार को साल 2012 में इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करने पर हिरासत में लिया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी रेडियो पर इंडिया बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। भारत सरकार ने खुद माना है कि देश के 256 जिले सूखे की चपेट में हैं और 33 करोड़ लोगों तक ये पहुंच रहा है सूखा। तो सूखे से का क्या इतना असर है, कितना क्यों बुरा है, और इन सब तमाम विषयों पर जो इस समय चर्चा में है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हिमांशु ठक्कर। हिमांशु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कितना विशाल है ये संकट, कितनी बड़ी है ये समस्या।
वास्तव में ये शायद आज़ाद भारत की सबसे भयंकर सूखा हमारे लोग झेल रहे हैं इस साल। और ये जो आंकड़े आपने बताए 256 जिले और 33 करोड़ लोग, वो तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में माना था, लेकिन वास्तव में एक साइलेंट डिजास्टर होती है ड्राउट, अकाल, सूखा। और वो बहुत, जितने पैमाने में सरकार मानती है उससे बहुत बड़े पैमाने पे होता है, और ये अलग अलग स्वरूप में होता है इसका असर। तो वास्तव में इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल के ले लीजिए, तो पश्चिम बंगाल इस लिस्ट में नहीं है जहाँ पर अकाल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फराका के नीचे गंगा तक सूख गई है। तो इसका स्वरूप जितना ये आंकड़े बताते हैं उससे ज़्यादा है। दूसरी बात है कि इसका जो असर है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक असर है पानी की बात, जो हम सुनते हैं कि लातूर में ट्रेन से पानी पहुँचाया गया, लेकिन पानी जो पहुंचाया जाता है वो पीने के पानी, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। और लातूर में बारिश के मौसम में भी 15 दिन में एक बार पानी मिल रहा था, उसके बाद 25 दिन में एक बार, महीने में एक बार मिल रहा था, तो अभी ट्रेन से ले जाना पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ पीने के पानी की बात है।
मैंने सुना कि अभी भी बारिश हुई है, अभी 2-3 दिनों में भी।
जी, लेकिन वो उसके आगे जो समस्या है, एक तो लोगों को खाने के लिए जो अन्न, बेसिक अन्न की ज़रूरत है, दूसरी बात है कि सिर्फ अन्न और पानी से नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको फिर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, नरेगा होना चाहिए। तो और फिर उसके साथ उनके जो जानवर है उनके लिए चारा चाहिए, उनके लिए पानी चाहिए। तो ये जो पूरी समस्या है वो सरकार अभी तक, न केंद्र सरकार न राज्य सरकारें इसकी गंभीरता को सही में स्वीकार कर रही है।
क्या किया गया है इस पर, हम आएंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए।
जी सर नमस्कार, मैं इंद्रजीत बात कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से।
जी इंद्रजीत, बताइए क्या आपके इलाके में क्या पानी की समस्या है?
सर हमारे इलाके में अभी चूंकि गर्मी का अभी समय चल रहा है, तो काफी पानी की प्रॉब्लम हो रही है, और टैंकरों के द्वारा भी लोगों को पानी अभी प्राप्त करना पड़ रहा है, काफी देर तक लाइन में खड़ा हो गए। सर
जो आपके इलाके के जो जलाशय हैं या जो पानी के जो सोते हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है?
जी सर अभी बहुत कम पानी है यहाँ पे आ रहा है, सभी जगह पे अभी पानी सूख चुका है, जो प्राकृतिक स्रोत है और जो सरकारी पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई होती है उसमें भी 2 या 3 दिन में एक बार पानी आ पाता है।
तो अभी क्या कुछ किया जा रहा है वहाँ पर?
सर अभी जो शहर के पास के इलाके है वहाँ पे तो टैंकरों के द्वारा अभी पानी पहुँचाया जाता है 2 या 3 दिन में, और जो गाँव के दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे तो सर खुद ही लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके अपना पीने के लिए पानी लाना पड़ता है।
जी बहुत शुक्रिया आपकी बात के लिए। और एक हमारे और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
मतलब मेरा कहना यह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लिए बहुत निष्क्रिय
है। आप अपना नाम और ये बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं राजकिशोर बोल रहा हूँ, शाहजहाँपुर यूपी से।
जी राजकिशोर जी, शाहजहाँपुर में क्या पानी की क्या दिक्कत है, आप क्या करते हैं?
मैं मतलब जर्नलिस्ट ही हूँ
जी,
यहाँ लोकल छोटा सा।
जी बताइए वहाँ पानी की क्या समस्या है?
पानी की समस्या, पेयजल की समस्या तो बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मतलब बोरिंग के सारे नहीं तो 80% मतलब जो मोटर लगे हुए हैं वो भी मतलब फेल हैं।
जी
समर सेविल का मतलब बहुत डेप्थ में जाके करीब 300 फीट करीब 150-250 फीट तक जो बोर बन रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, इससे आने वाले समय में और समस्या होगी। इसके बाद ये है कि लोग सड़कों पे भी छिड़काव करते हैं, सड़कें धोते हैं, पानी कितना भेजते हैं, नगर पालिका कुछ भी ध्यान नहीं देती है। दूसरी चीज, जो सड़क के स्टैंड पोस्ट लगे हैं इनकी स्थिति है, इनमें किसी में टोटियां भी नहीं है, ये पानी बहता रहता है हर समय, नगर पालिका के तालाबों को भरने के लिए पानी चलता रहता है, पेयजल के लिए समस्या रहती है।
जी 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 राजकिशोर जी बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत के लिए। हिमांशु जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों का जो इलाका है, आपने सुना पिथौरागढ़ और उन सब, वहाँ पर दिक्कत हो रही है, शाहजहाँपुर में दिक्कत हो रही है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन सब की बात, इनके बारे में ज़्यादा बातचीत हुई है, आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल, एक्चुअली ये जो हमने अकाल की आंकड़े देखे उसमें उत्तराखंड का कोई लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल, पिथौरागढ़ का जहाँ तक सवाल है और ये शायद पूरे उत्तराखंड में, इस साल एक जो गंभीर समस्या हुई है कि जो स्नोफॉल है जो शीतकाल में होता है वो काफ़ी कम हुआ है।
इस बार,
उसकी वजह से स्नो मेल्ट कम हो रहा है। दूसरी बात यहाँ हुई है कि वहाँ पर पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो और जो और तीसरी बात, और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में है, कि जो लोकल वाटर सिस्टम्स थी, जो तालाब थे, जोहड़ थे, स्प्रिंग्स थे, उत्तराखंड में स्प्रिंग्स होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं पानी के, इनको काफ़ी निग्लेक्ट हुआ है। तो हमारी सरकार जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देती है, बड़े बांध हो, बड़े इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हो, बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हो, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो, तो ये उनकी प्रायोरिटी में होता है। लेकिन लोगों को पानी की जो ज़रूरत है वो मूलभूत लोकल सोर्सेज से मिलता है। जो ग्राउंड वाटर है वो लोकल सोर्स है। आज हमारे देश की पानी की जीवन रेखा भूजल है, और विथ एवरी पासिंग डे हमारा भूजल के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वो सिंचाई के लिए हो, पीने के पानी के लिए हो, शहरों के लिए हो, उद्योगों के लिए,
और उसका लेवल लगातार नीचे जा रहा है।
एग्जैक्टली, वो अनसस्टेनेबल तरीके से यूज हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो रिचार्ज सिस्टम्स थी एग्जिस्टिंग उसको निग्लेक्ट हो रहा है, जो नदी हो, लोकल सिस्टम्स हो, वेटलैंड्स हो, फॉरेस्ट हो, इससे जो बारिश का पानी गिरता है वो ये सब के द्वारा रिचार्ज होता है। तीसरी बात, जो ये जो नेचुरल सोर्सेज जहाँ है भी वो डिसिल्टिंग नहीं होता है, तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। और चौथी बात है कि यदि भूजल भारत की जीवन रेखा है, आज दो तिहाई से ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो भूजल से होती है। गाँव में पीने का पानी का 85% सरकार के हिसाब से भूजल से आता है, शहरों का 55% और उद्योगों का 55-60%। और विथ एवरी पासिंग डे, यानी अजी भूजल जीवन रेखा है तो उसको रिचार्ज करना, उसको बढ़ाना, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसको रेगुलेट करना जरूरी है। जो शाजापुर के भाई साहब ने बताया कि कोई कंट्रोल नहीं है,
कोई उसको नियमित करने वाला,
तो उसको रेगुलेशन करना भी बहुत जरूरी है। वो रेगुलेशन लोकल तरीके से, लोकल स्तर पे ही हो सकता है।
आपकी बात पर वापस आएंगे। बुंदेलखंड की लगातार चर्चा हो रही है सूखे को लेकर के, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं ग्राम पौहार जिला बांदा से बोल रहा हूँ।
जी वीरेंद्र सिंह, बांदा से आप बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं और बताइए कि पानी की जो वहाँ पर जो समस्या है, जिसके बारे में वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, बीबीसी पर भी एक खास सीरीज हुई थी, आप बताइए कि क्या क्या कितनी दिक्कत है, आप लोग रोजमर्रा के जीवन में पानी का संकट किस स्तर तक झेल रहे हैं?
जी पानी का संकट तो बहुत बुरी दशा है यहाँ, आमतौर खासतौर पर बुंदेलखंड में तो बहुत भयंकर, शायद मेरी याददाश्त में ऐसा ये पहली बार इतना भयंकर सूखा देखने को मिला है, और सरकारें जो आंकड़ा पेश करती हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा पानी का संकट है, और सबसे ज्यादा त्रस्त ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, कृषक और ग्रामीण।
तो आप लोग जैसे अभी पानी की जो आपकी जरूरत है वो कैसे पूरी हो रही है, कहां से पानी मिलता है आपको और कितना मिलता है?
फिलहाल हमारा गांव तो नदी के किनारे पर स्थित है, तो कुछ हैंडपंप है जो, चूंकि नदी के जल स्रोत है, वैसे नदी तो लगभग आधी सूख चुकी है।
कौन सी नदी है ये?
ये नदी है ये पहाड़ पालिंजर के पहाड़ के पास से निकल के, इसका नाम है बागें।
अच्छा बागें, जी
जी। तो फिलहाल पीने के पानी की उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तो यहाँ खेतों में और किसान को
तो
है।
वो जो नदी का जो पानी है वो क्या आप लोग मटकों में भर के ले आते हैं या कैसे वो आपके घरों तक पहुँचता है?
जी नहीं, जल स्तर चूँकि हैंडपंपों का जल स्तर नदी के जल स्तर से मिला हुआ है
जी,
तो अभी हैंडपंप पानी दे रहे हैं, थोड़ा कम दे रहे हैं लेकिन हैंडपंप दे रहे हैं, और खासी पर्याप्त मात्रा में। वैसे कुओं में तो कभी पानी, आज कभी 15-20 सालों से कुओं में पानी नहीं रहता, सूख चुका है, वही हैंडपंपों का ही पानी आता है, लेकिन कुछ हैंडपंप ऐसे भी हैं जो खराब है। तो
ये आपका गांव तो करीब में है, जो और थोड़े से दूर इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति है?
ये बहुत बुरी स्थिति है, दूर दूर से लोग पानी लाते हैं, दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर से पानी, पीने का पानी लेकर के आते हैं, तो वहां तो और भी बुरी स्थिति है। हमारे यहां तो फिर भी ठीक है, नदी का किनारा होने की वजह से पीने के पानी की फिलहाल इतनी बड़ी समस्या नहीं है।
जी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपने सुना बुंदेलखंड के बारे में, लगातार चर्चा हो रही है कि वहाँ पर मतलब पिछले 15-20 सालों से लगातार, और वो हर साल बीतने के साथ जो है, गुजरने के साथ वो समस्या और गंभीर होती जा रही है। ये कहा जाता है कि वहाँ की समस्या चूँकि कई राज्यों के उसमें बटी हुई है, जो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा लगता है, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा लगता है, और दोनों ही सरकारों ने उसकी अनदेखी की है। कितनी मतलब उसमें कितना प्रकृति का रोल है और कितना सरकारों की भूमिका है?
देखो ये सही बात है, पिछले 10-15 साल से हम बुंदेलखंड की समस्या के बारे में सुनते आ रहे हैं, और बुंदेलखंड का जो पानी की जीवन रेखा थी वो चंदेल के राजा के ज़माने से जो तालाब बने थे लोग छोटे छोटे उसके ऊपर थी। दूसरी वहाँ पर जो छोटी नदियाँ हैं जैसे ये नदी देख लीजिए, ये नदी के पास उनके पास अभी भी पानी है। तो ये बताता है कि जो ऐसे सोर्सेस है उसको हम यदि प्रोटेक्ट करेंगे, उसको रिजुविनेट करेंगे, उसको एनहेंस करेंगे तो वहाँ पर पानी की समस्या बड़े पैमाने पे कम हो सकती है। दूसरी बात है वहाँ पर कि एक तो ये निग्लेक्ट हुआ है ये सोर्सेस, दूसरी तरफ माइनिंग बड़े पैमाने पे हुआ है, डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पे हुआ है, और तीसरी तरफ सरकार ने जो बुंदेलखंड पैकेज जो दिया है उसमें ज़्यादातर पैसा उन्होंने एक बड़ी बड़ी योजना जैसे केन बेतवा परियोजना है। आज भी हमारे जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी ने कहा है कि केन बेतवा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। वहाँ पर आज केन नदी पूरी सूख चुकी है और केन बेतवा नदी में केन का पानी बेतवा में ले जाने, बेतवा में अभी भी पानी है इस साल लेकिन केन में पानी नहीं है। तो आप सोचो कि जहाँ पानी नहीं है वहाँ से जहाँ पानी है वहाँ ले जाने की बात हो रही है, और वो एक बहुत बड़ा योजना है जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है जिसका डिफॉरेस्टेशन होगा पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो उससे समस्या बढ़ेगी एक्चुअली। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार का ध्यान ऐसे बड़ी योजनाओं के है जबकि ज़रूरी है कि ये लोकल योजना छोटी योजना के ऊपर ध्यान दिया जो एग्जिस्टिंग है उसको रिज्यूमिनेट करें।
जो पंचायती और इन सब के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं वहाँ भी प्रायोरिटी नहीं दिखती है पानी के इसके लिए व्यवस्था के लिए।
हाँ बिल्कुल नहीं होती। तीसरी तरफ क्या हुआ है कि सरकार ने कहा है कि पानी गवर्नमेंट बिजनेस है कई सालों से, तो एक मेंटालिटी हो गई लोगों में कि ये हमारा काम नहीं है तो सरकार का काम है। तो ये क्यों, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी इसकी वजह से लोगों को स्वामित्व नहीं होता है कि ये हमारा काम है, हम कुछ करें इसके बारे में। तो ये मेंटालिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए एक तो प्रायोरिटी देना ज़रूरी है कि लोकल सिस्टम्स को, लोकल रिसोर्सेज को, लोकल गवर्नेंस को और लोकल डिसीजन मेकिंग को, निर्णय प्रक्रिया को। और दूसरी तरफ ये जो निर्णय प्रक्रिया और गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करना है वो नीचे से ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। यदि केन बेतवा, हमने तो सरकार को कहा था केन बेतवा नदी जोड़ योजना आपको करनी है तो आप वहाँ की हर पंचायत को जाके पूछिए कि आपकी पानी की समस्या का हल क्या है, क्या ये योजना है कि नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमें लगता है कि जब तक ये पूरी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में लोगों को अपनी भागीदारी महसूस नहीं होगी तो स्वामित्व नहीं आएगा। वो नहीं आएगा तब तक लोग अपने आप इसके में पहल भी कम करेंगे, जहां पहल की है वहां समस्या का हुआ है।
जी आपकी बात पर वापस आएंगे। हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े रहे। जी अपना नाम बताइए।
हेलो
जी अपना नाम बताइए।
मैं बाड़मेर केतनौरिया गाँव से पठान खान गज्जू।
बाड़मेर से क्षमा कीजिएगा अपना नाम दोबारा बताइए।
पठान खान गज्जू।
पठान खान गज्जू जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपके इलाके में पानी की स्थिति क्या है, कहाँ आप लोगों को कितना पानी मिल पा रहा है?
हमारे तो यहाँ कुएं में पानी खूब है लेकिन बाड़मेर के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पानी की बहुत दुख है। वो पानी तीन तीन चार चार किलोमीटर से लाते हैं और डाल के गद्दियों और गादों पर लाते हैं।
तो आपके इलाके में कुएं कैसे पानी से भरे हुए हैं?
हमारे तो यहाँ खूब पानी है, कोई पानी की अभी तो कोई कमी नहीं है, बाद में कोई सूखा पड़ गया तो कमी।
वहाँ क्या क्या आपके इलाके में बारिश हुई है?
बारिश तो होती है, हमारे यहाँ हरी भरा खेत है क्योंकि झाड़ी खूब है, झाड़ी में बारिश हो जाती है
जी,
इस वजह से। दूसरे ये पानी का संकट जहाँ है वो नेताओं की वजह से, क्योंकि नेता झूठी वादा करता है वो निभाता
नहीं। लेकिन आपने हमारी बातचीत भी सुनी, स्थानीय लोगों लोग जो है वो उसको किस तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं इसका भी बहुत असर पड़ता है। आपके इलाके में क्या लोग पानी को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं?
पानी की यहाँ है तो हमारे यहाँ बूंद बूंद सिंचाई करते हैं और पानी पीते हैं, उतना ही वापराते हैं, ज्यादा पानी खर्च नहीं करते हैं। जहाँ पानी नहीं है वहाँ तो पानी का घड़ा एक दिन भर में चलाते हैं, एक घड़ा या दो घड़ा
जी।
ये तो समस्या पानी की यहाँ बाड़मेर में तो ज्यादा है। यहाँ कुछ पानी के लिए कुछ नहीं किए सरकार ने, न किए न तो नेताओं ने किए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक और श्रोता जुड़ रही है हमसे। जी अपना नाम बताइए।
नमस्कार, मैं अल्मोड़ा से वाग्मी बोल रही हूँ।
जी वाग्मी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या करती हैं बताइए?
मैं नवी कक्षा में पढ़ती हूँ
जी।
और मेरा सवाल ये है कि सूखे की मार सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों पर ही क्यों पड़ती है? टीवी पर जो लोग बाल्टी लेकर पानी के इंतजार में दिखाई देते हैं वे सभी गरीब लोग होते हैं। क्या इस सूखे की मार बड़े नेताओं या उच्च पदाधिकारियों पर भी पड़ती है?
जी वाग्मी की उम्र ज़रूर कम मालूम पड़ती है, लेकिन उन्होंने सवाल बहुत बुनियादी और बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि जो आम लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उन्हीं तक क्यों पानी की मार पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल, एक्चुअली लातूर की बात भी करें तो लातूर में आज स्थिति ये है कि जो जिनके पास पैसा है वो जितना टैंकर्स लाए खरीद सकता है। तो इसलिए इनकी बात, वाग्मी की बात बिल्कुल सही है कि एक्चुअली ये जो मैनेजमेंट है उसका प्रॉब्लम है। सरकार ने कहा कि पानी हमारा बिजनेस है और मैनेजमेंट उनके हाथ में है, लेकिन वो मैनेजमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट का हावी हो जाता है। तो टैंकर लॉबी को जो पानी मिल रहा है वो तो वही पानी है वहाँ का, वो कोई बाहर से पानी नहीं आ रहा है। तो उनको जो पानी मिल रहा है वो यदि सरकार उसको एक्वायर करे वहाँ का और वो लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करे, इंस्टेड ऑफ ये प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिटेरिंग हो। उसी तरह वहाँ पर बॉटल वाटर इंडस्ट्री बड़ी चल रही है लातूर में, तो इन लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि और वही बात महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में देखेंगे तो नहीं है, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे पानी का जो सोर्सेस है उसको उन्होंने एक्वायर किया और उन्होंने उसको पूरा मोबिलाइज करके यूज़ किया है कि जिनको बेसिक समस्या है उनको। तो जैसे लातूर से सोलापुर में इस बार कम बारिश हुई, लेकिन लातूर को ट्रेन से पानी जा रहा है, सोलापुर के सिर्फ 26 गांव में टैंकर से पानी जा रहा है
जी।
सोलापुर बहुत बड़ा जिला है। सोलापुर में 2012 में इस साल जितनी बारिश हुई उससे ज़्यादा बारिश हुई थी, तब 200 गांव में टैंकर से पानी जाता था। इस साल कम बारिश होने के बावजूद ज्यादा कम गांव में जा रहा है कम बारिश, क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन काफी प्रो पीपल तरीके से उन्होंने इसका मैनेज किया है।
कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो जल और इस तरह के जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारी बहस, जैसा कि आपने सुना, यहां पहुंच चुकी है कि सरकारों की कितनी भूमिका है इस पानी के संकट में और आम लोगों के की लापरवाहियां और उनकी जो वो जो कुछ कर सकते थे वो कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है?
पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि हिमांशु जी ने भी अभी कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है, और अगर आपको याद होगा कि अमर्त्य सेन ने एक बार ये फूड क्राइसिस के मामले में कहा था कि एक्चुअली जो फैमिन्स हैं वो इसलिए जो वहाँ पर नहीं होते हैं जहाँ पर कि पैदावार कम होती है, लेकिन उस समय पे होते हैं जबकि पैदावार तो ठीक होती है लेकिन कहीं ना कहीं डाइवर्शन किया जाता है, उसका प्राइवेट कंट्रोल आ जाता है उसके ऊपर, और यही बंगाल फैमिन में हुआ था। मुझे लगता है कि पानी की जो सिचुएशन है वो भी बिल्कुल जैसा कि अभी मैं सुन रहा था बिल्कुल उसी तरीके से है कि जब सरकार या जब लोग मैनेज करते हैं किसी चीज़ को तो क्राइसिस नहीं होता है। जब ये जो आज हम देख रहे हैं, चाहे वो लातूर है, चाहे मराठवाड़ा के इलाके हैं, चाहे देश के 10 राज्यों में जो सूखा पड़ा हुआ है, जिस तरीके से पानी का संकट और गहराया हुआ है, वो बेसिकली इट्स अ मैन मेड क्राइसिस। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है पानी का, जो इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है या इनएडवेंटली यूज होता है। जैसा कि देखें, आज हम मान के चलते हैं कि कई लोग कहते हैं 70-90% पानी जो है वो खेती में यूज होता है। मेरा मानना ये बहुत पुराने आंकड़े हैं, इसको अब भूल जाना चाहिए। अब तो तकरीबन 50% खेती में यूज होता है, 50% शहरों में यूज होता है, और वो जो शहरों का पानी का हम उपयोग है उसकी हम बात बहुत कम करते हैं, किस तरीके से वहां पर उसका दुरुपयोग हो रहा है या कोई केयरलेसनेस कह लीजिए या कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। तो दोनों मिला जुलाकर अगर हम देखते हैं तो पानी का संकट जो है वो मैनमेड है, और इसमें एक शायद इन्होंने पहले कहा भी होगा कि कई फसलों का जो एक चक्र है वो हमें समझना है कि ये क्या कारण है कि सूखे इलाकों में जहां पर कि सूखा पड़ता है या बरानी इलाके जो हैं वहां पर हम वो फसलें लगाते हैं जिसमें पानी का ज्यादा उपयोग होता है, मसलन की हाइब्रिड क्रॉप्स, हाइब्रिड फसलों को और हाई यील्डिंग वैरायटीज जो है, जो उन्नत बीज हैं, दोनों में बहुत फर्क होता है। हाई यील्डिंग वैरायटी में जैसे अगर हम धान की एक एग्जांपल लें तो धान की जो उपज जो वैरायटी है हाई यील्डिंग, उस पर 5000 लीटर पानी चाहिए एक किलो धान पैदा करने के लिए, तो हाइब्रिड में तकरीबन 7500 लीटर पानी चाहिए एक किलो धान पैदा करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब जैसे इलाके में जहां 98% एश्योर्ड इरीगेशन है वहां पर तो उन्नत बीज लगते हैं राइस के, लेकिन सूखे इलाकों में, बरानी इलाकों में, वहां पर हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड कॉटन, हाइब्रिड ज्वार, हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड सब्जियां, ये सब हाइब्रिड मेज, ये सब वहां पर आपको मिलेंगे जहां पर कि पानी का ज्यादा दोहन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस फसल चक्र को और जो सिटी के रिक्वायरमेंट है दोनों को बैलेंस करने के लिए, ये जो हम लोगों ने मैनमेड क्राइसिस लिए है क्योंकि हमने वो नहीं किया और हम सोचते हैं कि शायद प्राइवेटाइजेशन से इसका जो क्राइसिस को हम एड्रेस कर पाएंगे, मेरा मानना है कि वो बिल्कुल कहीं गलत फहमी है हमारे सामने कि प्राइवेटाइजेशन इज द आंसर। प्राइवेटाइजेशन बल्कि क्राइसिस को बढ़ाता है, जैसा कि अभी हिमांशु जी भी बता रहे हैं।
जी देवेंद्र शर्मा जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाह रहा था कि क्यों पानी का जो संकट है, मतलब इसके लिए बहुत उस तरह से लोग जागरूक नहीं दिखते हैं, लोगों में उस तरह से आंदोलन की भावना हो या जो भी आप इस संकट का सामना करने के लिए इस वक्त की जरूरत है वो मूल रूप से दिखाई नहीं देती है, क्या वजह हो सकती है आपकी नजर से?
देखिए, ये इकोनॉमिक सोच है, इकोनॉमिक सोच ये बिल्ड अप कर दी गई है बहुत सालों से कि जो पानी की जो मिसमैनेजमेंट है या जो पानी की जो क्राइसिस है वो, एक तो ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर उसका दोषी है क्योंकि यहाँ पर बिजली फ्री मिलती है तो वो ट्यूबवेल चलते रहते हैं, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपका जब नलका खोलते हैं शहरों में तो जैसे नलका खोलते हैं पानी आता है, जब आप फ्रिज खोलते हैं तो आपको ठंडा पानी मिलता है, और जिस तरीके से हम पानी का दुरुपयोग शहरों में करते हैं वो भी उसका रीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बिल्डअप ये किया गया है कि भाई क्राइसिस जो है वो हमारे करके, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे करके नहीं है, वो उन लोगों द्वारा है जो गंवार हैं, जिनको पानी का उपयोग नहीं करना आता, ये एक मानसिकता हमारी, एक बात तो ये तैयार की गई है। दूसरा ये कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पानी की उसको जो इकोनॉमिक कॉस्ट है या उसकी कॉस्टिंग करने की या उसकी प्राइवेटाइजेशन करने की बहुत जरूरत है, तभी हम देखते हैं अभी तक भी रायपुर में जो छत्तीसगढ़ में एक नदी के 75 किलोमीटर जो प्राइवेटाइज हुए थे वो आज तक वहीं पर है, 75 प्राइवेटाइज हुए थे और उसमें इंडस्ट्री को जो उसके लिए हुए थे वो उसका उपयोग कर रही है, और डिस्पाइट प्रोटेस्ट डिस्पाइट सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार ये मान के चलती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यही एक मॉडल जो है जो जो बिल्कुल ठीक रहेगा, वाजिब रहेगा।
जी देवेंद्र शर्मा जी,
पर हम गलती कर रहे हैं।
जी हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़ रहे हैं, अब समय कम बचा है तो जरा जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताइए।
नमस्कार सर, भान सिंह के वक्त टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं।
जी भान सिंह जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप, आपके इलाके में पानी की कितनी समस्या है?
बुंदेलखंड की स्थिति तो इस समय मराठवाड़ा जैसी है
जी,
और सर जो बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत जो 7200 करोड़ रुपया विशेष पैकेज मिला था
जी,
तो आधा तो पानी के ऊपर खर्च हुआ है और हालात जस के तहत है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए सारा आप रुपया।
जी जी जी,
मगर बुंदेलखंड में आज ये स्थिति नहीं होती सर अगर ये सही क्रियान्वयन होता इस परियोजनाओं का पैसे का।
जी बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत के लिए। आप इन आपने भी बात की कि जो पैकेज मिल रहा है वो बड़े परियोजनाओं पर खर्च हो रहा है और जमीन तक जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है।
बिल्कुल, एक्चुअली ये बुंदेलखंड का जो पैकेज है वो बनाने में भी बुंदेलखंड के लोगों को कभी पूछा नहीं गया कि आपको क्या पानी की समस्या क्या है, उसका हल क्या है, कभी नहीं पूछा गया। और वही बात मराठवाड़ा में है, मराठवाड़ा में पश्चिम महाराष्ट्र में जो गन्ने की फसल होती है, शुगर फैक्ट्रीज लगी है, तो वहाँ के किसान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वहाँ जो शुगर फैक्ट्रीज कैसे आ गई, वो जो पॉलिटिकल और वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्होंने अपनी शुगर फैक्ट्रीज लगा दी है, और एक बार शुगर फैक्ट्री लग गई तो किसान के लिए तो आसान हो जाता है, एश्योर्ड रिटर्न मिलता है जो उनको दलहन और तिलहन से नहीं मिलता है। हमने वहाँ के किसानों को पूछा कि पानी नहीं है तो आप गन्ना कैसे लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम दलहन लगाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है हमको मिनिमम प्राइस मिलेगा। तो ये सरकार की जो नीति है, जो देवेंद्र शर्मा जी मैनमेड क्राइसिस के रीजंस बता रहे थे, वो ये सब दिखाता है, वहाँ का शुगर फैक्ट्रीज और गन्ने की किसानी होती नहीं चाहिए।
तो हमारे स्टूडियो मैनेजर अब इशारा कर रहे हैं, समय पूरा हो चुका है। देवेंद्र शर्मा जी और हिमांशु ठक्कर जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया और या हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग अब विकराल रूप लेती जा रही है, राज्य में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी हो गया है। संवेदनशील स्थानों पर सेना की मदद ली जा रही है और राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस टीम एनडीआरएफ की 3 टुकड़ियों को उतार दिया गया है। आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक मस्जिद के ढह जाने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों में से कई निर्माण काम में लगे मजदूर थे जो शहर के उत्तर में इस इमारत की मरम्मत का काम कर रहे थे। यह घटना तब हुई जब 100 से अधिक मजदूर इमारत की नींव बनाने के लिए इसमें कॉन्क्रीट डाल रहे थे। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के आधार पर प्रमोशन को अवैध करार दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी मानसी दास और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं शाकिर आलम। निखिल रंजन को दीजिए अनुमति, 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।